कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
आपको जोर से बोलिए आवाज नहीं आ रहा है।
हरे कृष्णा
वृंदावन धाम में वास करते हैं और कई देशों की यात्रा करके श्रील प्रभुपाद का और चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है उसको देश के और दुनिया के कोने कोने में विस्तार कर रहे हैं। तो हम लोग महाराज जी से निवेदन करेंगे कि वही श्रीमद् भागवत कथा का हमको रसपान कराएं, जिस कथा को सुन के परीक्षित महाराज केवल 7 दिन में भगवत धाम प्राप्त कर लिए थे। इसके लिए महाराज जी तो साक्षात यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोग से भी निवेदन रहेगा कि आप लोग शांतिपूर्वक अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करें, ताकि जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने श्रवण किया उसी प्रकार आप भी श्रवण करके भगवत धाम प्राप्त करें। तो महाराज से निवेदन करूंगा कि महाराज श्री कथा को प्रारंभ करें। हरे कृष्ण।
संकीर्तन करने
आपको जरा था मदद आएंगे देवल सिंह हम आप अजी विश अजी से
दी आर्टिस्ट चार दे देखन से
जरा था मदद
हम प्लेयर हमने उसे एवरीथिंग इज रेडी
वी कैन गो टिल 9:40 टुडे चंद्रग्रहण और प्रसाद हम लेट होगा महाराज 9:40।
हरे कृष्णा। सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद आप करना चालू होगा क्योंकि चंद्रग्रहण है तो प्रसाद करीब 10 बजे के आसपास प्राप्त होगा। तो आप सभी लोग धैर्य पूर्वक बैठे रहिए, यहाँ से हिलिएगा नहीं, प्रसाद नहीं है तो प्रसाद करीब 10 बजे मिलेगा। तो धैर्य पूर्वक 2 घंटे का कथा श्रवण का आज हमारा सौभाग्य है, तो सब लोग ध्यानपूर्वक कथा श्रवण।
हरे कृष्ण। आप सभी श्री राधा मदन मोहन इस्कन खारघर के सेवक सेविका वृंद को आज माघ पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण के शुभ अवसर पर भगवत नाम कथा कीर्तन के लिए उपस्थित होने के कारण आप सभी से स्वागत है। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय जसोदा नंदन गज यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना वीर वनकारी यमुना वीर वनकारी
Hare Hare
परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की इस्कन प्रतिष्ठाताचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड से गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय श्री श्री व्रज वृंदावन धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की श्री जगन्नाथ देव भगवान की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की श्री द्वारिका धाम की श्री बद्रिका धाम की श्री अयोध्या धाम की गंगा देवी जमुना देवी की वृंदा देवी तुलसी महारानी की युग धर्म से हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की समवेत भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की हरे कृष्ण। तो जहाँ तक मुझे सूचना प्राप्त है कि आपके इस क्षेत्र में अगले रविवार को श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा ही है ना, ये उपलक्ष्य में श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय तीन दिन का चार दिन का अच्छा चतुर्दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है, लेकिन सौभाग्य को प्रथम दिन आज जो है ये माघ पूर्णिमा है, ऐसे माघ मास तपस्या के मास माना जाता है। इस महीने में थोड़ा सर्दी ज़्यादा पड़ता है, बम्बई में तो कम होता ही है बाकी जगह में, तो इसी महीना में गंगा जमुना आदि पवित्र नदियों में सब स्नान करते हैं लोग। जब कभी कुंभ मेला लगता है, माघ मेला, माघ स्नान, ये माघ मास में होता है। तो इस माघ मास के पूर्णिमा आज है और उसमें भी आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है। आप लोग सब दिखे भी होंगे, यहाँ से दिखाई पड़ता होगा शायद। अच्छा, इस तरफ दिखता है। तो ठीक आज से एक महीना के बाद जो फाल्गुन पूर्णिमा तिथि होगा, उस दिन में एक विशेष तिथि है। क्या है? श्री गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव तिथि। जब श्री गौरांग भगवान, श्री गौरांग महाप्रभु आज से लगभग 525 साल पहले फाल्गुन पूर्णिमा तिथि में प्रकट हुए थे, आविर्भूत हुए थे, उस दिन भी शाम को इस प्रकार पूर्ण रास चंद्र ग्रहण था, चंद्र ग्रहण हुआ था। उस दिन का वर्णन करते हुए भगवान के लीला के कवि सी कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में साक्षात कृष्ण ही इस कलियुग में आए, और उन्होंने आने का एक उद्देश्य था हम जैसे कलियुग के लोगों का उद्धार करना। कलियुग में उद्धार का दूसरा कोई उपाय है नहीं, हमारे पास कोई शक्ति सामर्थ्य क्षमता नहीं है, इसलिए कलियुग में केवल नाम ही आधार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण अपने नाम में अवतरित होते हैं कलियुग में। तो इस नाम को प्रचार करने के लिए भगवान आए। तो भगवान जब आए वो साथ में नाम को लेकर के आए, साथ में नाम को लेकर के आए। जहां भगवान प्रकट हो वहां इस इलाके में, उस एरिया में अबाल वृद्ध वनिता, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, सभी वर्ण के, सभी आश्रम के, सभी प्रकार के लोग हरि राम करने लगे। क्यों? कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, क्योंकि उस 1486 साल के माघ फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि में जब पूर्णग्रास चंद्र ग्रहण हुआ, तो महाप्रभु तो प्रकट हुए थे गंगा तटवर्ती इलाके में, नवद्वीप में, मायापुर में। तो गंगा के किनारे जितने बस्ती, जितने गांव है, सारे लोग चंद्र ग्रहण को देख करके ग्रहण समय में हरि नाम करना और स्नान करना, ये विधि आप लोग करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन नियम है कि चंद्र ग्रहण से, जब चंद्र ग्रहण शुरू होगा उससे 8 घंटा पहले सूतक लग जाता है। सूतक लगता है तो देवनीति और भोजन बनाना, खाना पीना, ये सब निषिद्ध है, ये सब नहीं कर सकते हैं। सब मंदिर बंद रहेगा, भोजन पाकशाला बंद रहेगा, बंद करके और अपेक्षा करेंगे। जब ग्रहण लगेगा तो उसी समय माना जाता है कि सबसे शुभ समय होता है। किस कार्य के लिए? श्रवण कीर्तन के लिए। इसलिए ये अनादिकाल से प्रवाद है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय में पवित्र नदियों में स्नान, हरि नाम के कीर्तन और हरि कथा के श्रवण, यही उचित कर्म होता है। यही अशुद्धि में शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है। भागवत में वर्णन आता है कि एक बार ऐसे सूर्य ग्रहण की सुजोग था जिसमें भगवान कृष्ण समस्त जदवंशी अपने सपरिवार द्वारका से चल करके कुरुक्षेत्र आए थे स्नान करने के लिए। कितनी लंबा रूट, तभी तो ट्रेन तो था नहीं, ना कोई रिजर्वेशन से, ना मोटर भी था, आए हूँ घोड़े गाड़ी हाथी चल करके इस प्रकार आए होंगे हल दिवे द्वारका से कुरुक्षेत्र गए स्नान करने के। अरे केवल वो नहीं, पूरे भारतवर्ष से सभी देश से लोग आते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के समंत पच्चक सरोवर है, अभी पवित्र सरोवर है, तो वहाँ स्नान करना विधि है। वहाँ ग्रहण के समय स्नान करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे, दान करेंगे, यज्ञ करेंगे। भागवत वर्णन है दशम स्कंद में कैसे दान यज्ञ कथा कीर्तन ये सब भगवान स्वयं किए थे अपने सब परिवार के साथ, सारे ऋषि मुनि सभी आए थे। साधारण लोग जो देख कर करते हैं, लेकिन जो जानकार व्यक्ति है, जो शास्त्रज्ञ है, जो पंडित है, जो ऋषि मुनि है, जो धर्माचारी है, जो शास्त्र के आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं, वो तो निश्चित रूप से इस प्रकार नियम का पालन करेंगे। बाकी कुछ करे ना करे, ग्रहण के समय में जब तक ग्रहण के अवधि रहता है, ग्रहण शुरू होने से पूर्ण मुख्य पूरा ग्रहण छूट जाने तक बाकी कुछ नहीं करना चाहिए, सब बंद करके केवल श्रवण कीर्तन करना चाहिए। यही विधि है शास्त्र में बताया गया, वो अनादिकाल से चले आ रहा है। बाकी अभी हम आते समय देखे ग्रहण लगा है, लोग कितनी ट्रैफिक जाम है, भीड़, तब भी कोई कुछ नहीं कर रहे, केवल आप ही थोड़े बहुत लोग हैं जो शास्त्रज्ञ हैं, धर्माचारी हैं, जो नियम पालन करते हैं, ऋषि मुनियों की परंपरा को निभाते हैं, यहाँ बैठ कर कथा सुनने के लिए आए। नहीं तो आप में से भी अनेक गप्पा मारते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना नहीं? क्योंकि ये शुभ समय सब में सभी समय नहीं आता, कितने 50-100 सैकड़ों साल के बाद इस शुभ समय आता है। इस शुभ समय में कथा कीर्तन करना उसका विशेष प्रभाव, उसको केवल धर्मज्ञ व्यक्ति ही, ऋषि मुनि लोग ही जान पाते हैं, और जो उनके अनुयायी हैं वही जानते हैं। तो इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होने का समय हुआ, तो उस समय में आकाश में पूर्ण ग्रास चंद्र ग्रहण हुआ। तो इस चंद्र ग्रहण को देख करके गंगा तटवर्ती जितने गांव के लोग थे सब हरिनाम कीर्तन करने लगे, हरिनाम कीर्तन करने लगे। और ग्रहण जैसे जैसे मुख्य होते गया, तब तब गंगा स्नान करने गए। कुछ स्नान करने के बाद फिर कोई कुकिंग करेंगे, भोग लगाएं, खाएंगे, फास्टिंग रहते हैं। तो सारे लोग जाते हैं, घर साफ सुथ करेंगे, स्नान करके फिर जाके करेंगे, सुतक से शुद्ध करेंगे। तो सारे लोग सोच रहे हैं कि हरिनाम किस लिए कर रहे हैं, ना ये ग्रहण है इसलिए हरिनाम कर रहे हैं। जितने हिंदू जाति के लोग थे वो तो ग्रहण को मानते थे, वो ग्रहण के उपलक्ष्य में हरिनाम करते थे, गंगा स्नान करते थे। लेकिन जो विधर्मी थे उन लोग भी वहाँ, इसमें कोई दूसरे जाति के लोग रहते थे तो वो ग्रहण फ्रहण को नहीं मानते हैं, वो लोग भी नास्तिक वृत्ति के लोग भी, वो लोग बोले क्या हो गया उन लोगों को, आज सभी लोग हरी हरी बोल रहे हैं, हरी नाम ले रहे हैं, क्या हो गया। ऐसे उनको क्रिटिसाइज करने के छल में वो लोग भी हरी नाम बोलने लगे, जो कभी हरी नाम नहीं लेते हैं। लेकिन आज उनको लगा कि वो लोग क्या हो गया, शाम से लगे हैं हरी नाम करने, क्या पागल हो गए वो लोग। तो इसी प्रकार उनको उनको मजाक उड़ाने के लिए, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए भी स्वयं को पता नहीं वो भी हरिनाम लेने लगे। उसके कारण उनको नहीं समझ आता कि वास्तविक श्री नाम भगवान ने, श्री महाप्रभु जो स्वयं नाम है, कलिकाल में नाम रूप में अवतार हुए भगवान, उन्होंने अपने नाम को उस इलाके में सभी के मुख प्रकट कराए। चाहे कोई जान करके करे, कोई अनजान में करे, ये ग्रहण तो एक माध्यम मात्र था, वास्तविक भगवान ने सबको अपने इच्छा से नाम कराना चाहते हैं। नाम के साथ में भगवान प्रकट हुए, नाम प्रकट हुआ दुनिया में, लाखों संख्या में हरि नाम करते रहे, उसी से भगवान प्रकट हुए, नाम के साथ प्रकट हुए। जब प्रकट हुए थे तो बिल्कुल चंद्रमा ढका हुआ था, पूर्णग्रास था, अंधकार था। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान प्रकट हुए, सारे दुनिया में सब ग्रह नक्षत्र शुभ स्थान को प्राप्त किए, इतनी उच्च स्थिति में रहे, ये चंद्रमा को होकर आ गया। तो उसका कारण बताते हुए कहते हैं कि हर पूर्णमासी में चंद्रमा तो फुल मून में, पूर्ण चांदनी की रात होता ना, पूर्ण चंद्रमा होता है, पूरे चांदनी की रोशनी धरती पर बिखरता है। लेकिन उस दिन भी पूर्णमासी था, पूर्ण रूप में चांदनी प्रकाश होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो धरती पर भगवान गौरचंद्र प्रकट हुए तो इसे चंद्रमा को देख करके वो चंद्रमा ने शर्म के मारे बोला, अरे मैं उनका सामने क्या हूँ, इतने सुंदर भगवान गौरचंद्र के रूप में बिल्कुल पिघलते हुए सोना जैसा चमक। इस प्रकार गौरांग महाप्रभु गौरचंद्र भगवान जब प्रकट हुए तो इस चंद्रमा बोला, इस चंद्र के सामने मेरा क्या इज्जत है, तो शर्म के मारे अपने मुंह छिपा लिया, मुंह छिपाया, बोला शर्म उनका सामने में क्या खड़ा ना, ये तो मेरे बस से मेरे मालिक है। वो जब गौरचंद्र के रूप में प्रकट हुए धरती पर, मैं उनको क्या लाइट दिखाऊं, तो शर्म के मारे अपने मुंह छिपा ली, घूंघट डालते ना वो डाल दी, बोले ना ये मुंह दिखाने के लायक नहीं, उनके सामने क्या दिखाऊं, मैं उनके सामने क्या दिखाऊं। तो गौर भगवान गौरचंद्र के प्रकट होने के जान करके चंद्रमा अपने मुंह छिपा ली, बोले मेरे सुंदरता, मेरे शीतलता, मेरे प्रकाश उनके सामने नगण्य है, तुच्छ है, दिखाने लायक नहीं, इस कारण से मुंह छिपा ली। तो आज माघ पूर्णिमा है, अभी एक मास बाकी है फाल्गुन पूर्णिमा तिथि को, हो ना हो चंद्रमा को लगा कि ये इस शहर में इतने लोग गौर पूर्णिमा के लिए बड़े उत्साही हैं, गौर पूर्णिमा के उत्सव बड़े ढंग से करेंगे, इस कारण से अड़वान से एक महीना पहले से मुंह छिपा ली। आप लोग कथा कीर्तन करेंगे, रथ यात्रा करेंगे, अब भगवान के सामने चंद्रमा तो कुछ नहीं है, मुंह छिपाना ही है उसको। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो गौर भगवान थे, गौर चंद्र थे, लेकिन आप जगन्नाथ भगवान है तो काले चंद्र है, जगन्नाथ जी काले भगवान है ना, वो काले के भी काले कर देते काला कर देते हैं उनके। तो इस प्रकार पूर्णिमा की तिथि में जब चंद्र ग्रहण होता है, इस अवसर में जब भगवान गौरचंद्र प्रकट हुए थे, आपने साथ में प्रकट होते समय में हरि नाम को लेकर आए, बाकी भले किसी को नहीं समझ में आया कि क्यों ऐसा हरि नाम करते हैं, उसके बाद में सब स्नान करके गांव वाले सब गांव में आए, घर में आए, पता चला सची माता के वहां एक बेटा हुआ है, स्त्रियां सबसे पहले दौड़ते हैं, सुतिका गृह में से स्त्रियां ही जा सकती है, तो पहले जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, आजकल जैसे कोई बच्चे तो घर में पैदा होते ही नहीं, नर्सिंग होम नहीं तो हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, लेकिन पहले जमाने में इस था नहीं, सब घर में सुतिका गृह होता था, वहीं संतान डिलीवरी वार्ड ही हुआ करता था, आजकल डिलीवरी वार्ड तो हॉस्पिटल नर्सिंग में होता। तो स्त्रियां गई दौड़ करके, जाके देखे सद्यजात शिशु को, देखते ही इतने उल्लसित हो गए, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसा संतान कभी किसी शिशु देखे नहीं थे, इतने उज्ज्वल थे, इतने चमक था उनके शरीर में, इतने चमक था और इतने शरीर का सुंदरता था, उसको देख करके जो भी गया सुतिका गृह में वो अति सुख प्राप्त किया उसको देख करके, तो देख करके बड़े खुशी हुए, वास में जाए उनके बड़े सराहना के, आ हा साक्षात देवता आए कि क्या हुआ कैसे, उनका जिसका जितने समझ जितना बुद्धि था सब प्रशंसा किए, बोलने लगे। अब जानते ना शिशु पैदा होते तो क्या करते हैं, अरे ओपनिंग रोकर तो होता ना, हाँ। तो भगवान भी रोने लगे, इतने सुंदर सी विग्रह था उनका, इतने सुंदर अंग उपांग था, उसमें रोने भी इतने अच्छा लगता था, कोई उनको रोने को बंद करना नहीं चाहता था, वो भी बहुत सुंदर लगता है, वेरी नाइस। लेकिन ये रोए जा रहे हैं, वो देखे जा रहे हैं, लोग आनंद ले रहे हैं, रोना भी बहुत अच्छा है, अरे रो रहा है बच्चा, उसको चुप कराना है, चुप कराने के लिए कितने प्रयास करते गए तो चुप ना हो, रोना बंद ना हो, रोना बंद नहीं हुआ, अब शिशु तो शिशु को बोल नहीं सकता किस कारण से रोता है। किसी ने उन स्त्रियों के बीच में किसी ने बोलता है क्या रो रहा है, वो भगवान का नाम लिए हरि 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 ही उनको रक्षा करे, ये तो रोते ही जा रहा है। जैसे हरि के नाम लिया तो रोना बंद हो गया, स्टॉप। तो सारे स्त्रियां ने समझे अच्छा ये रहस्य है, और जब रोएगा हरिनाम लेने से उनका रोना बंद होता है। तो उनने समझ गए सब बात में कहने लगे, देखा ये दवाई है, जब बच्चा रोएगा तो हरिनाम करो तो चुप हो जाएगा। और सही में भगवान ने जब देखेंगे घर में लोग आए तो जानबूझकर रोते थे, रोते सब बोलते थे रोना शुरू किया, अरे कुछ नहीं करना है हरिनाम करो, हरिनाम करते थे। तो भगवान ने रो रो करके दूसरे के द्वारा हरिनाम करवा रहे थे। शिशु अवस्था में प्रकट होते समय हरिनाम कराए, शिशु अवस्था में हरिनाम कराए, पौगंड कुमार अवस्था में भी उन्होंने हरिनाम करवाए, और कुमार अवस्था किशोर अवस्था प्राप्त किए तो सैकड़ों सैकड़ों लोगों को साथ में लेकर के साथियों को नगर कीर्तन करने लगे, रुद्ध द्वार कीर्तन करने लगे, उच्च कोटि के संकीर्तन नाम संकीर्तन करने लगे। और जब अंतिम में अवस्था में संन्यास लेकर के भ्रमण करने लगे अन्य स्थान में, तब तो कहना किया है, तब तो लाखों करोड़ों संख्या में लोग पीछे चलते थे, और भगवान कीर्तन करते करते जब जाते थे देखने बनता था। आजान लंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताख्यो विश्वंभरो द्विज भरो जीव धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। ऐसे करुणा के अवतार थे, हाथ इतने लंबे लंबे घुटने से नीचे तक जाता था, आजान लंबित भुजो कनक मतलब सोना, सोने जैसा चमचमाते चमक सोने के पूरा शरीर, इतने बड़े 8 फीट के लंबा चौड़ा हाथ लंबे लंबे सोने जैसा चमकता हुआ शरीर, आयत नेत्र पूरा कान तक खींचा हुआ लंबे लंबे रत्नारे आंख, कुंचित केश, और उसके सामने वो इतने बड़े बड़े आयत नेत्र से गंगा जमुना के धारे की तरह आंसू बहता है, लंबे लंबे हाथ को ऊपर उठाए हैं वृद्ध बाहु करते हुए नृत्य नाचते नाचते अब हरि नाम लेते लेते जाते थे। उनको जो देखता था जैसे भी अवस्था में देखता था, कोई स्थान काल पात्र परिस्थिति से परे जिनका जिस प्रकार जहां भी नजर पड़ता था वही उसी प्रकार से तुरंत आकर्षित होता था। सब कुछ भूल करके इसी ताल में हरिनाम करते थे। भगवान जब जाते थे हमेशा इसको गाते थे, कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण। Krishna 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 Hare Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Rakshama राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। अभी चंद्र ग्रहण है, खोल करके बोलिए ना, क्या श्रम करना है, कोई देखने वाला तो है नहीं, पर्दा बंद है। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। इस प्रकार नाम कीर्तन करते हुए नाचते नाचते भगवान चलते थे, तो पीछे उनके सकड़ों हजारों लोग चल पड़ते थे, सब भूल जाते थे। आपने नीच खुद का शरीर का भान भी नहीं रहता था लोगों का, इतने आकर्षक भगवान के नाम कीर्तन, उनका नृत्य, उनका चलना था। तो इसे भगवान इस कलिजुग में, विशेष करके जो कलिजुग के निवासी हैं, जिनका पास में आपने कल्याण का और कोई ऑप्शन ही नहीं है, नो ऑप्शन, क्यों? क्योंकि कलिजुग में हमारा जो स्थिति होगा उसका सिम्टम्स, उसका लक्षण बताते हैं भागवत पुराण में, प्रथम स्कंद भागवत में उसका वर्णन आता है। जब नैमिषारण्य में हजारों संख्या में मुनि ऋषि कलिजुग आने से पूर्व द्वापर अंत में ये कलिजुग आएगा, इतने खतरनाक युग है, ऐसे ऐसे उसका लक्षण है, दुलक्षण है, इसमें लोगों का कैसे भलाई होगा, ये सोच करके उन्होंने ब्रह्मा से जाके कंसल्ट किए, वो इसे के जाग चून करके जागा एक सिलेक्ट किए, निमिषह अरण्य, जहाँ चक्र जा करके निमिज उसका स्पर्श किया, उस निमि अरण्य में जा करके 1000 साल का यज्ञ करने का निर्णय किए, संकल्प कर बैठे 1000 साल तक यज्ञ करेंगे। किस लिए करेंगे? कलिजुग के इस दुलक्षण को, उसके काउंट्रैक्ट करने के लिए, उसके प्रभाव को दूरीभूत करने के लिए। अब यज्ञ कर बैठे, इसमें दिन में तो यज्ञ आदि होता था, शाम के समय में कथा होता था, पुराण कथा आदि होता था। कई सैकड़ों साल यज्ञ करने के बाद में कुछ उनको नतीजा नहीं मिला, संतुष्टि नहीं हो रहा था, अब सभी दुखी थे। बोले हवन करते करते आग में घी डालते डालते सब धुआं से आम काले पड़ गए, कितने टन लकड़ी जला दिए, सब काले पड़ गए, कुछ होता नहीं है, दुखी थे सब। 88,000 ऋषि मुनि थे, कम नहीं थे। तो भाग्य क्रम से श्री सुख परीक्षित सभा से सुख जी के, सुख मुनि के शिष्य श्री उग्र सभा श्रुत, वो आ रहे थे उस रास्ते पर, वहां पहुंचे। उनके पिताजी यहाँ थे, उनका पिताजी के बलराम के द्वारा निहत हो गए थे, तो सुत गोस्वामी गद्दी नसीन हुए, सभी लोग उनको बैठाए, तो उनको प्रार्थना करते हुए सारे ऋषि मुनियों के नेता श्री सोनक मुनि ने उनको पूछते हैं, सुत जी कृपा करके हमको ऐसे कुछ बताइए, हम और क्या कहें, बहुत दिन तक यज्ञ किए, पुराण सुने, लेकिन हमको कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। आप तो सारे शास्त्र पुराण को पढ़े लिखे हैं, बहुत साध्य साधना किए हैं, योग नियम धर्म सम दम आदि सब किए हैं, अभी हमको, हम तो इतने पता नहीं कब रहेंगे, जाग जाग करके समय बिता दिए, अब हमको ये कुछ बताइए कि जो सारे समुच्चय शास्त्र में जो निचोड़ है उसको क्या है, और वो निचोड़ हमारे लिए फिट क्या बैठेगा, जिनको हम कर पाएंगे, बड़े सरल से सुविधा से कर पाएंगे, और करके जिसके द्वारा हमारा शरीर नहीं, मन नहीं, आत्मा भी सुप्रसन्न हो जाए, और ऐसे कुछ उपाय बताए सुत जी, जिनको हम करें और डाउट होगा कि पता नहीं होगा कि नहीं, इतने दिन किया पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जैसे अभी कर करके हम फंसे, ऐसा नहीं, 100% गारंटेड ऐसे कुछ उपाय बताइए, और हम ज्यादा समय बीतेगा, इतने समय तक करना पड़ेगा, ऐसा बताए, ऐसा नहीं, श्योर शॉट हो, और ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहिए, और ज्यादा परिश्रम भी करना ना पड़े, ज्यादा खर्चा ना करना पड़े, ज्यादा तकलीफ ना उठाना पड़े, निश्चित फलदायी हो, सबसे अच्छा हो, सारे शास्त्र का निचोड़ हो, और जिनके द्वारा सबसे श्रेष्ठ आत्मा प्रसन्न हो जाए, इतने सारे लंबा क्वेश्चन जो पूछे। सुध जी बोले, भैया आप लोग इतने दिन से जाग यज्ञ कर रहे हैं, पुराण सुन रहे हैं, उसमें तो कई प्राणों में विभिन्न प्रकार के उपाय बता गया, आप उसको कर सकते हैं। बोले सूत जी आप कहते हैं, हम सुनते आए हैं सैकड़ों साल से तो कर रहे हैं, लेकिन अनेक शास्त्र है, बहुनिंच शास्त्र, इतने इतने शास्त्र पुराण है, अब सा शास्त्र में ये हमें एक बात बता तो उसमें ये बात बता रहा है, उसमें ये बात बता तो क्या हम करें। एक मुनि एक बात का मत, मुनि नाम चमति भ्रतम मत, सबका मत अलग अलग होता है, शास्त्र पुराण का भी कहना अलग अलग, और हमारा पास ना तो फिर कोई मत करो ना, नहीं हम उसे पढ़ नहीं सकते ना, क्यों ना, हम कलिजुग है ना, कलिजुग है तो क्या होगा ना, आपको पता नहीं क्या कलिजुग के क्या लक्षण है। तब उन्होंने सोनक मुनि ने सुत गोस्वामी को कलिजुग के लक्षण बताते, बोले हम कलिजुग ही ठहरे, अभी कलिजुग का शुरुआत हुआ था, हम लोग तो पक्का कलिजुग है। तब शुरुआत में वो कहते हैं कि कलिजुग में ये लक्षण, ये उनका सिम्टम्स है, उसका लक्षण है, क्या क्या है। तो बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देव, हे ऋषि, प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलो वास्मिन जुगे जना। सबसे पहले लक्षण कलिजुग का होगा, कलिजुग में जो मनुष्य होंगे उनका सबसे पहला लक्षण क्या है, आयु बहुत कम होगा, बहुत कम जीवन अवधि होगा। बोले कैसे, बोले अन्यान्य युग में, जैसे चार युग है, सत्य युग में लोगों का आयु था 100,000 साल, 100,000 साल जीते थे, तो इसीलिए 60,000-80,000 साल लोग तपस्या करते थे, 100,000 साल का उम्र होता था। उसके बाद घट करके जब तृतीय युग आया 10 गुना घट गया, धर्म भी घटा, सारे चीज घट गया लोगों की क्षमता, तो आयु 10 गुना घट करके 10,000 साल हुआ। तृतीय युग में आयु था लोगों का 10,000 साल। उसके बाद द्वापर आया और 10 गुना घट गया, द्वापर युग में लोगों का उम्र कितना हुआ, 1,000 साल हुआ। अब हमारा टर्न आया कलिजुग, इसमें और 10 गुना घट गया, हमारा टेन्योर कितना है, 100 है, लेकिन सही में कितने लोग सेंचुरी मार पाते हैं, सब 50 के बाद लड़खड़ाते हैं, फिर तो आउट हो ही जाते हैं, नट आउट कौन रह पाता। तो पूरा जितने उम्र है आयु 100 साल तक तो मुश्किल से कोई जा पाते, तो इसलिए सबसे पहला लक्षण कलिजुग में तो उम्र बहुत कम है, अल्प आयु सा कलो वास्मिन जुगे जने। तो इसलिए आपको हम प्रार्थना करते हैं, तो आप ऐसे कुछ उपाय बताए कि जो हमारे फिट बैठेगा बिल्कुल 20-25 साल में हो जाए, क्या गारंटी हम बचेंगे कि नहीं, 50 हाफ सेंचुरी में हुआ कि नहीं डाउट। हाँ 50 साल में तो वृद्धत्व आ जाता है, पक्का बुढ़ापा आ जाता है, अब आगे डाउट भरे रहता है। तो इसलिए इसी उम्र को देख करके आप उपाय बताए, आप इतने लंबा बता देंगे कई 1,000 साल तब, जब होने हो ही नहीं सकता हमारे से, तो उस समय को देख करके बताए ऐसे उपाय, प्रेरण अल्प आयु। तो सूत जी बोले कि कोई बात नहीं, अगर आयु कम है तो कम समय में भी अगर प्रयास किया जाए, कठिन परिश्रम करो तो कम समय में भी सफलता प्राप्त हो जाएगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा, काम अगर लगन से करो, परिश्रम करो तो कम समय में भी सफलता मिल जाएगा। सोनकादि बोले सूत जी यही तो बात है, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप कलिजुग के दूसरे लक्षण नहीं जानते ना, दूसरे लक्षण क्या है, ना दूसरी लक्षण है, पहले लक्षण तो कम आयु वाले हैं, दूसरी लक्षण है मंदा, कलिजुग में सारे लोग मंद है, मंद शब्द का अर्थ है डल, आलसी, आलसी जो सीड खाते हैं, आलसी वाला नहीं, आलस्य, एक आलसी खाते हैं ना कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो आलसी नहीं, आलस्य मतलब लेजी, लेजी कहने समझ में आ जाता नहीं, आलस्य समझते ना किसी को कहते हैं, हाँ क्योंकि हम सभी सांपुल्त है और क्या है, दूसरे किसी को थोड़ी बताना पड़े, हम अपने आप में सब सांपुल मौजूद है, सभी आलसी है, एक एक नंबर के आलसी। आलसी मतलब अगर बोला जाए प्रभु जी या माता जी ये काम थोड़ा, और कोई नहीं मुझे ही बोलना पड़ता, वो भी तो है, वो भी तो है, किसी बहाना दे करके खुद ना करे, काम नहीं करने का हर प्रकार का प्रयास करेगा, किसी प्रकार से मुझे कोई काम ना करना पड़े। लेकिन काम के परिणाम फल भोगतने के नंबर वन लाइन में सबसे पहले खड़े होंगे, लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे। यही है चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने का सब आलस्य है। इतने आलस्य है वो क्या कहा जाए, हद हो गया आलस्य की। तो इतने आलस्य है कि आप बोलते हैं परिश्रम करने, परिश्रम क्या, श्रम ही नहीं करेंगे ज्यादा से, इतने आलस्य है, मर भी जाते हैं आलस्य के कारण, लेकिन करना नहीं चाहेंगे। तो बोले अच्छा, आप परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, एक तो कम समय है, वो कम समय काम करो, तो काम नहीं करना चाहना, नहीं काम करने का किसी का इच्छा नहीं, सब आलस्य आलस्य है, कोई काम करने का नहीं चाहते। बोले तब तो फिर बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, अगर लेजी है तो इंटेलिजेंट हो, लेजी इंटेलिजेंट तो फिर गुड, आलस्य हो के बात नहीं, बुद्धि से काम लो। बोले हे सूत जी, आप कलयुग के तीसरा लक्षण नहीं पता है क्या, ना क्या प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलो वास्मिन जुगे जना मंद, दूसरा लक्षण सुमंद मतयो, तीसरा लक्षण है मति मतलब बुद्धि, मंद मति मतलब खराब बुद्धि, मंद मतलब खराब, खराब बुद्धि, सुमंद मतय मतलब सु मतलब अच्छा तरह से खराब बुद्धि, मतलब सारे दुर्बुद्धि हैं हम लोग, तो बुद्धि है ही नहीं, मतलब बुद्धि कोई भले आपने आपको कौन समझे, लेकिन वो पहले से बहुत घुस गया कि तुम उड़वा के सोचते ऐसा है, लेकिन सब सुमंद मतय हो, अच्छे तरह से खराब बुद्धि वाले हैं। तो इसलिए बुद्धि की बात छोड़ दीजिए, बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं, बुद्धि से कैसे काम लेंगे। तो बोले अब आई भी काम है, काम भी नहीं करना चाहेंगे, बुद्धिहीन है, तब क्या जैसा ना, तब तो इसलिए पूछते हैं, ऐसे देख करके हमको दवाई दीजिए। बोले तब तो फिर भाग्य ही संभाल सकता है, अगर आप सौभाग्यवान हो तो ही काम मिल सकता, आप तो आप ज्यादा समय टिकेंगे भी नहीं और काम नहीं करना चाहते हैं, इतने आलस्य है, बुद्धि भी नहीं लगाएंगे, बुद्धि ही नहीं मूर्ख है, तब तो तुम्हारा भाग्य अगर सही है तो काम बने। भाग्य मतलब भाग्य शब्द का अर्थ हम दूसरे समझते हैं, लेकिन शास्त्र में भाग्य को कहा गया सौभाग्य मतलब साधु संग, जिनका भाग्य उदय होता है उनको सत्संग प्राप्त होता है। तो बोलते हैं इसे सत्संगत में, साधुओं के संगत में जाओ तो ये सौभाग्य का उदय होता है, तो इसी के द्वारा से काम होगा। बोले हे सूत जी, अब चौथा लक्षण नहीं जानते क्या, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, किसी का भाग्य भी अच्छा नहीं है, क्या सब हतभागा, कोई सत्संग में जाना नहीं चाहता, साधु संग करना नहीं चाहता, साधु संग करने के लिए तो खूब हजारों करोड़ों के लोग भीड़ हो जाएंगे, लेकिन साधु संग में कोई नहीं आता, ये भाग्य नहीं किसका, ये भाग्य भी नहीं, फिर नहीं जाएंगे ना, नहीं आप क्या हो सकता है। बोले तभी तो हम बता रहे हैं कुछ सोच के ना, तभी तो कलयुग में जो साधु जन होते हैं इस प्रकार के लक्षण को देखकर कृपा करके होम डिलीवरी करने लगे, हाउस प्रोग्राम करते हैं, जा जाकर अपने घर में घुस करके बताते हैं उनको, बोलते चलो आप नहीं आएंगे, आपको होम डिलीवरी देंगे, वहीं पे आपके घर में जाके प्रोग्राम करके आएंगे। तो बोले तब तो भलाई होगा उनका। बोले तभी भी काम नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले अंतिम लक्षण कल जो कहा उपद्रता, बोले उनके घर में भी जाओ, उनको जाकर सुनाओ, तभी घर में होते हुए भी वो नहीं सुनेंगे। बोले क्योंकि उपद्रव तो बोले दुनिया भर का, बोले पेट में दर्द है, सर दुख रहा है, अभी बच्चे रो रहा है, जैसे बच्चे अभी देखो, अब नाना प्रकार के जटिलता, नाना प्रकार के इससे अड़चन आता है कि हो ही नहीं सकता। घर में जाते हुए भी घर में ही आयोजन करे सत्संग, लेकिन बोलेंगे मुझे तो ये सब देखना है, ये कौन आ रहा है जा रहा है, उनके खाना पीना का व्यवस्था सब देखते, मैं तो नहीं सुन पाऊँ। घर के आदमी भी नहीं कर पाए, उपद्रुता, नाना प्रकार के झगड़ा झाटी, शारीरिक बीमारी, ये सबसे फंसे हैं कि तब भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए सारे चीज को कंसिडर करके, सारे चीज को सोच विचार करके ऐसे कुछ उपाय बताइए ताकि हमारे कल्याण हो और निश्चित हो। क्योंकि अभी हमको ये बता दे, हम ये इतने सालों से कर रहे हैं, कोई पता नहीं लगता होगा या नहीं होगा। तब जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे तब सुत गोस्वामी सोचे पड़ी, ये तो सारे पॉइंट लगा दिए, ऐसे कुछ बात बताओ जिसमें हम निश्चित कल्याण होगा, जो सारे शास्त्रों का निचोड़ होगा, सारे संत महात्मा का मतामत होगा, कम समय में होगा, श्योर शर्ट होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कम समय में होगा और परिश्रम भी ना करना पड़े, बुद्धि ना लगाना पड़े, और कोई भाग्य में होगा ऐसे भी नहीं है, कोई डाउट नहीं रहेगा, निश्चित ऐसे होकर रहेगा। अब इतने सारे पॉइंट लगा दिए, कलयुग मतलब फुल डिस्काउंट चाहता है, कोई 50% 60% 75% ना, कुछ भी नहीं। तो भगवान एक से पूरा पूरा डिस्काउंट, फुल डिस्काउंट कर दो, लो जा। तो भगवान ने इसलिए इतने उदार हो करके बोले, तुम्हारे हाथ में तीनों ऑप्शन कुछ है ही तो नहीं, ना तो यज्ञ कर पाएगा, ना तप कर पाएगा, ना तपस्या कर पाएगा, ना और कोई उपासना आदि साधन कर, तो कुछ नहीं कर पाएगा, चलो सारे छूट दे करके केवल भगवत नाम कीर्तन करो, केवल हरि के नाम, और उस नाम में भी तत्र न नियम न काल, उसमें कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं है, कि रूल रेगुलेशन हम कर ही नहीं सकते तो काहे को देंगे, बोले हो तू करेगा नहीं, देख करके हमारा नाम क्यों खराब करें, सारे एग्जम्प्ट कर दिए, बोले सारे छूट दे दिया चलो, लेकिन फिर भी हम हद हो गया तब भी नहीं करते। शास्त्र में तो हरि नाम के बारे में ऐसे महिमा वर्णन है, ऐसे पुराण में कहा गया, आज चंद्र ग्रहण है, गोकोटि दानम ग्रहणम खगस्य, खग मतलब चंद्रमा, अगर चंद्र ग्रहण के समय सबसे शुभ माना गया दान आदि देने के लिए, अगर चंद्र ग्रहण के समय में करोड़ों संख्या में गोदान कोई सत पात्र में करे, पुराण में लिखा गया है, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य, चंद्र ग्रहण के समय करोड़ों संख्या में गोदान भी तू कर लो, प्रयाग गंगा दुककल्प वास, अब माघ मास में माघ मेला लगता है, बड़े पवित्र स्नान के महिमा होता है माघ स्नान में, इस माघ स्नान माघ मास में प्रयाग में जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम स्थली, इस प्रयाग क्षेत्र में तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में जाकर के कल्पवास करो, कल्प पर्यंत वास, प्रयाग गंगो दककल्प वास, प्रतिदिन त्रिसंध्या में संगम में जाकर के त्रिवेणी संगम में तीन बार स्नान करो, वहीं वास करो, कल्प वास करो, प्रयाग गंगा कल्पदल्प, प्रयाग गंगा उदक कल्प वास, और क्या ना, यज्ञ सुमेरु सुवर्ण दान, यज्ञ युतं, कोई यज्ञ करो, अनेक अनेक यज्ञ कर में यज्ञ करके आयुत आयुत मतलब हजारों हजारों संख्या में सोना दान दो, कैसे सुना कितने परिमाण में ना, मेरु पर्वत के समान, यज्ञ उतंग यज्ञ युतंग मेरु स्वर्ण दानम, बड़े बड़े यज्ञ करके आयुत आयुत संख्या में, आयुत मतलब 10,000 संख्या में मेरु पर्वत के प्रमाण स्वर्ण दान करो, पवित्र समय में सत्पात्र में, ये सारे करने को कर, सारे मिलाकर भी गोविंद नाम कीर्ति सते न समंग सतांशय, गोविंद नाम कीर्तन के समान, समान क्या, उनके 100 भाग भी एक हिस्सा नहीं होगा, 7वां हिस्सा में एक हिस्सा नहीं बन पाएगा, सारे को मिला करके मतलब ग्रहण समय में करोड़ों संख्या में गोदान करो उचित सत्पात्र देख करके ब्राह्मण को, और प्रयाग तीर्थराज में जा करके त्रिश्रेणी संगम में त्रिसंध्या कल्पो समय तक कल्पवास करके करो। बड़ी बड़ी यज्ञ में मेरु पर्वत जैसे सुवर्ण करोड़ों संख्या में दान करो, और इस सबको मिलाकर भी गोविंद के नाम कीर्तन का एक सकड़ों हिस्सा की समान नहीं हो सकता। गोविंद नाम कीर्तन का इतने महिमा वर्णन किया गया, इतने नहीं, लेकिन इतने नाम महिमा वर्णन करने पर भी दुर्दैवम इद्र समिहा न जनि अनुराग, हमारा दुर्भाग्य की क्या कमी कम है क्या, क्या दुर्भाग्य की सीमा इतने अधिक है कि इतने छूट देने पर भी, इतने रिहात देने पर भी, इतने महिमा होने पर भी हमारा नाम में रुचि नहीं है रुचि। अब मैं क्या कहूं, आप लोग तो सब भगत है, शायद आपका रुचि होता होगा, सोलामाल तो शायद करते होंगे। मैं आपने उदाहरण बताता हूं, जैसे झोली माले में हाथ पकड़ते हैं, भले 8, 8:30, 9 बजे आज उठा था सो करके, जैसे माला हाथ में लिया, तुरंत कहां से जमाई था तभी निकलता है। ये जमाई निकलने का क्या है इस लक्षण, आलस्य के लक्षण है ना, अरे तुरंत आएगा। किसी को नींद नहीं होता है, बोलते हैं बोलते सोने के लिए पील खाना पड़ता है, स्लीपिंग पील लेना ही पड़ता, नींद नहीं होता, बड़े स्लीपिंग पील के बाप है हमारे पास, स्लीपिंग पील फेल मार जाना, क्या माला पकड़ो, झोली माला पकड़ा तो स्लीपिंग पील फेल मार जाए, लेकिन ये फेल नहीं मारेगा, वो तो दिन में ही सुला देगा, रात क्या है, संगत में सुला देगा, बेड लगाना नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे मच्छर भी काटे, प्रसाद अभी हुआ ही नहीं तब भी झोंका जाए, ऐसे ही महाप्रभावशाली। तो कितने हमारे रुचि है उसमें, है ना नहीं? तो कम से कम बाकी समय में ना हो, जब कभी कभी शुभ अवसर प्राप्त होता है तभी तो कर लेना चाहिए, शुभ अवसर हमेशा नहीं आता। जैसे आज की दिन है, आज की इसी समय जो है, जो अभी अभी चंद्रमा ग्रहण ग्रास में है, सारे शास्त्र में कहा गया कि इसी समय में जो नाम कीर्तन करे, नाम श्रवण करे, भगवान की महिमा आदि श्रवण करे, तो उनका तो शुभ का कोई ठिकाना नहीं, इतने अजस्र शुभ कल्याण होगा, लेकिन फिर भी नहीं। तो चलो, आप जितने आ करके साधारण में बैठे तो आप तो कम से कम कल्याण करना ही चाहते हैं, शुभ करना चाहते हैं, आज की शुभ बेला का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने वही ग्रहण की पूर्णिमा तिथि, ये माघ पूर्णिमा फाल्गुन पूर्णिमा में पूर्ण ग्रहण में जिन्होंने प्रकट हुए, उनको साक्षात नाम ही भगवान कहा गया, ये सुख्यात नाम है। जैसे कहा गया पुराण में, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो कृष्ण भगवान कलियुग में नाम के रूप में अवतरण करते हैं, तो ये कलियुग में जो चैतन्य महाप्रभु अवतरण किए वो स्वयं नाम ही है, स्वयं नाम है, इसलिए नाम के साथ ही अवतार हुआ, और उनके पूरे चरित्र में केवल नाम कीर्तन ही महिमा है। जब उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा लिए केशव भारती से, उनका भारती महाशय उनका नाम देना सोच रहे थे, बोले क्या नाम दूँ, इतने सुंदर शरीर, इतने सुंदर विद्वान, ये पुरुष क्या नाम रखूँ, क्या नाम, मंत्र देने में तो फंस गया था, मंत्र ही उनको महाप्रभु ने स्वयं दिए, नाम देने के लिए भी बड़े फंसा हुआ था, क्या नाम दूँ, क्या नाम दूँ, भगवान ने प्रेरणा दिए शुद्धा सरस्वती ने, कैसे भारत के मन में विराजमान किए और उनको प्रमटिंग किए। बोले ये नाम कैसा है, मैं कौन सा नाम, ना श्री कृष्ण चैतन्य। ये नाम को भगवान ने जब सन्यास ले रहे थे उसी समय में प्रकट करवाए, ये नाम पहले नहीं था धरती पर, श्री कृष्ण चैतन्य नाम। श्री कृष्ण चैतन्य नाम को प्रकट कराए तो इसको सुन करके उनके गुरु केशव भारती सुना ये एक नाम इतने सुंदर अलौकिक नाम श्री कृष्ण चैतन्य, फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूं। वो तो बड़े पंडित थे, वो व्याख्या किए, बोले जो सारे विश्व में समस्त लोगों को श्री कृष्ण नाम बुलवा करके उनके चेतना को जीवित जीवित कर रहा है, चेतन करवा रहा है, वही तो श्री कृष्ण चैतन्य हो सकता है। तो जो पुरुष सख्यात भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य इसीलिए पड़ा, पहले तो उनका नाम निमाई था, गौरांग बोल रहे थे, विश्वम्भर बोलते थे, लेकिन ये नाम भगवान आपने आप प्रकट करवाए। बोले ये दी नाम, दी असली नाम तो ये श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य नाम, ये नाम को भगवान परम मंगल नाम को प्रकट करवाए, क्योंकि इस नाम के अर्थ है जो समस्त प्राणियों को श्री कृष्ण नाम उच्चारण करा के उनके चेतना को जीवित करवाता है, चेतन करवाता है, वही होगा श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण के द्वारा जो चैतन्य प्राप्त कराता था श्री कृष्ण चैतन्य। जब इसी सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी में जो हेड पंडित थे, उन्होंने जब वेदांत पढ़ा रहे थे, महाप्रभु स्टूडेंट के रोल कर रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते 7 दिन में जब उन्हीं का ही हाल खराब हुआ, उनका तर्क जो बुरी तरह से पराजय हुआ, तो उन्होंने फिर श्लोक करके जब महाप्रभु को देखे कि ये तो कोई साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकता, ये एक साधारण बालक के रूप में इतने विद्वता कि मेरा बोली ना चले, मैं सर्व वेद विशारद सार्वभौम भट्टाचार्य को ऐसे निरुत्तर कर दिया, मैं वेदांति को सचमुच दांत निकाल दिया, कुछ बात ही नहीं निकल रहा है मेरे से। अब जब एक बार संज्ञाहीन अवस्था में होकर पड़ गए, सार्वभौम मूर्छित होकर के भगवान के चरण में, आप कौन है, आप मनुष्य हो ही नहीं सकता है, कृपा करके बताएं हम कौन है। तो भगवान बोले कि चलो अब बहुत हो गया, वृद्ध आदमी बड़े पंडित थे, ब्राह्मण है, कुलीन भट्टाचार्य, अब तो डोज हो गया काफी, अभी बता देना चाहिए आईडी प्रूफ अपना। तब भगवान ने अपने स्वरूप दर्शन करा दिए, आपने भगवत रूप उनको दर्शन करा दिए। अरे साक्षात भगवान को सामने देख करके थर 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 कांपते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य खड़े हुए, धराम करके गिरते थे, उठते थे, पड़ते थे, मुंह से कोई वचन नहीं लेकर रहा था, पसीना उतर रहा था। भगवान ने पहले चतुर्भुज नारायण, उसके बाद कृष्ण षडभुज रूप दिखा दिए, उसको देख करते कंपित वतन होकर के तुरंत भगवत कृपा से फिर संज्ञा प्राप्त हुए, खड़े होकर के सार्वभौम भट्टाचार्य बोलने लगे, उनको स्तुति करने लगे। बहुत महाविद्वान पंडित थे, संस्कृतज्ञ थे, संस्कृत भाषा में भगवान को स्तुति करने लगे। नाम तो सुने थे कि आपने साला से गोपीनाथ भट्टाचार्य, नाम क्या हो, श्री कृष्ण चैतन्य नाम है। तो उन्होंने इस नाम को लेकर के श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा मुझे कृपा कीजिए, तो इस प्रकार 100 श्लोक में स्तुति किए। सार्वभौम शतकम उसको कहा जाता है, सार्वभौम शतकम। इसके स्तुति करने के बाद श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये मंत्र ले, बोले आज से मैं दुनिया को खोल कर बोलता हूं, इसी को ही जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, यही नाम लेना चाहिए, श्री कृष्ण चैतन्य सचिसुत गौर गुण धाम, यही जप, यही ध्यान, यही कर नाम। ये चैतन्य चरितामृत में सार्वभौम भट्टाचार्य ने स्वयं बोले, बोले यही नाम करना चाहिए, यही जप करना, यही ध्यान करना चाहिए, श्री कृष्ण चैतन्य सचिसुत वही गौर गुण धाम है, वही गुण धाम है, सर्व गुण गण धाम। तो इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य नाम में सबसे उत्कृष्ट नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। जब नाम के आचार्य श्री हरिदास ठाकुर, जिनको भगवान ने आचार्य पदवी दिए, नाम के आचार्य, उन्होंने जिन्होंने नित्य प्रति 192 राउंड माला करते थे। हम लोग तो 24 घंटा में 16 माला हो जाए सांस लेते हैं चैन से, वास तो कोटा पूरा हो ही गया, जैसे धक्का धुक्की मार के पूरा कर ही डाले। लेकिन उन्होंने 192 राउंड करते थे पर प्रतिदिन, और वो भी क्या नियम रखे थे, जब तक मेरा संख्या माला पुराना हो जाए तब तक भोजन नहीं करूंगा। हम लोग तो कहते भूखा पेट भजन ना है गोपाला। अब ब्रेकफास्ट लंच नहीं होगा तब तक माला में हाथ नहीं चलेगा, पहले खाएं तब करें। लेकिन जो नाम के आचार्य थे श्री हरिदास ठाकुर ने, उनका नियम था जब तक इतने राउंड पूरा ना करे माला। आप और हम थोड़ा विचार करके सोच कर देखिए, सभी आप लोग सोलह माला वाले होंगे मैं आशा करता हूँ, तिलक लगाएं हम लोग सब। सोलह माला करने आप कितने टाइम लगता है, अरे भूल गए, प्रभु जी ने 2 घंटा बोलते हैं, 2 घंटा में कर लेते हैं। 2 घंटे अगर रोक ठक पक्का अगर ठीक ठीक से करते हैं, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं, ध्यान लगाकर बैठ के करेंगे तो आधे घंटे में 4 राउंड, 1 घंटे में 8, 2 घंटे में 16 राउंड पूरा होता है। बिल्कुल नॉन स्टॉप छींक सूंक ये हो सूसा कह का कुछ ना करे, एक बार कंटिन्यूस करो तब 2 घंटे में 16 पूरा हो जाता है। अब 64 करने में कितना लगेगा, हिसाब लगाओ, 8 घंटा लगेगा। 192 करने में 3 गुना होगा ना, 64 का 3 गुना 192 होता ना, कितना लगेगा, 8 गुना 3 24 घंटा। हमारे पास दिन रात मिलकर कितने घंटा है, अगर हम 192 करें हमारे कुछ बचेगा, तो माला करने में तो 24 घंटा लग जाएगा। मैंने नॉन स्टॉप अगर करे तो छींक छांक भी करूँ सूं सा इधर देखना भी नहीं, अगर कंटिन्यूस नॉन स्टॉप करे पूरा दिन रात 24 घंटा तब जाकर 192 राउंड पूरा होगा। भैया खाना पीना सोना नहाना बाथरूम हैंटेन वो भी तो कुछ है, ये शरीर धर्म तो कुछ है, वो भी तो एक शरीरधारी थे और तुमको शरीर धर्म तो कुछ करते होंगे बियॉन्ड इमेजिनेशन। हमारा कल्पना से बाहर की बात तो कैसे करते थे सोचा नहीं जा सकता। हमारे हिसाब से तो भाई 24 घंटा दिन रात नॉन स्टॉप लगा तब जाके पूरा हो पाए, वो कैसे करते थे। और एवरीडे एक दिन कर दें तो सप्त पुरुष उद्धार हो जाए, हम अभी तक ये नहीं स्वप्न भी नहीं देखे करने का लेकिन वो प्रतिदिन कर देते। वो नामाचार्य वो हरिदास ठाकुर जिनको भगवान ने स्वयं ये पोस्ट दिए आप नाम के आचार्य हो। एक दिन श्री जगन्नाथपुरी में जब हरिदास ने इस प्रकार नाम कहते, उनको वृद्ध थे, कुछ शरीर में तकलीफ आ गया था, बुखार आदि हो गया होगा, तबीयत ठीक नहीं था तो बैठ नहीं पा रहे थे, लेटे थे, मंदिर में तो नहीं जाते थे दर्शन करने के लिए, एक दिन भी नहीं जाते थे, वही चक्र को दर्शन करते थे, मंदिर के ऊपर जो चक्र था ध्वजा उसको दर्शन करते थे और नाम करते थे बैठे बैठे, और भगवान के पास वो नहीं जाते थे, भगवान उनके पास आते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद जगन्नाथ जी के प्रसादी और माला लेकर के उनके पास आते थे, प्रतिदिन आकर उनको दर्शन देते थे, माला प्रसाद देते थे। आज उन्होंने आए, उनके साथ उनके सेवक गोविंद था, आकर देखे कि अद्भुत बात है, हरिदास उठ के प्रणाम करे प्रतिदिन, महाप्रभु आइए स्वागत करे, आज प्रणाम नहीं स्वागत नहीं, बुढ़ा लेटे लेटे हुए भी नाम लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसे लो वॉल्यूम में हाथ भी चलता है मुंह भी चलता है, सोते सोते करते हैं, वो पूरा करना है संख्या मालूम। तो महाप्रभु देखे क्या कोई तबीयत खराब है, शायद आज आचार्य लेटे हुए हैं, गोविंद को बोले देखो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, आप जाकर प्रसाद दे आओ। गोविंद जाके बोले ठाकुर जी प्रणाम, प्रभु ने प्रसाद भेजे हैं जगन्नाथ जी के प्रसाद। तो हरिदास ठाकुर आंख खुले देखे महाप्रभु खड़े हैं, वो आज उठ करके उनको स्वागत करना, प्रणाम करना, पद सम्मान करना, छूना नहीं कर पाते हैं, शरीर में शक्ति नहीं, उठ नहीं पाते हैं, उठने के शक्ति नहीं। वही देखे कि प्रभु खड़े हैं, मैं लेटा हुआ, दुख इतने लगा, आंख से आंसू बहने लगा, रो पड़े, रोते 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 माला करते थे, रोते ले महाप्रभु देख रहे, प्रभु दुखी हो गए, बोले क्यों रो रहे हैं, क्या तकलीफ है, शरीर अस्वस्थ है। आंसू पोंछ करके हरिदास ठाकुर बोले, प्रभु शरीर अस्वस्थ नहीं है, शरीर तो मेरा ठीक है, फिर क्या तकलीफ है, ना मन अस्वस्थ है, मन ठीक नहीं है। बोले क्यों, क्योंकि मेरा संख्या माला आज पूरा नहीं हो पा रहा है, माला संख्या पूरा नहीं हो पा रहा है, और आप प्रसाद लेकर आए हैं, ये प्रसाद महाप्रसाद है जगन्नाथ जी का, उसको अवमान असम्मान नहीं कर सकता हूँ, प्रसाद खाना चाहिए, और मेरे नियम तोड़ जाओगा, मैं अभी तक मेरा संख्या पूरा नहीं हुआ, प्रसाद कैसे खाऊं, आप आए, आपको प्रणाम तक नहीं कर पाता हूँ, धिक मेरा जीवन, मैं नाम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरा मन अस्वस्थ है। इससे प्रमाणित होता है कि नाम शरीर से नहीं होता, नाम किसके द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है। इस शरीर तो भौतिक वस्तु है, नाम पूर्ण चिन्मय शुद्ध वस्तु है, उनके साथ तो मन का ही संबंध है, मन से करना चाहिए, मन को देना चाहिए। भगवान इसलिए मन मांगते, मन मना भव मया आसक्त मना पार्थ, मन को मुझ में आसक्त करो, शरीर को मत करो, शरीर से क्या है, कचरा भरा है। तो मन मेरा ठीक नहीं, क्योंकि मन के द्वारा मैं नाम नहीं कर पाता हूं। तो भगवान चले गए, हरिदास ठाकुर लेटे होते पास में जाकर हाथ लगा करके सबसे करके बोले कि इतने ढीठ मत बनो, इतने हट मत करो, कोई जरूरत नहीं, आपको क्या, आप सिद्ध है, आप नाम जप करते करते सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध हो, सिद्ध स्वरूप हो चुका है आपका, आपको जरूरत नहीं। जो लोग साधक है वो अपने नियम के अनुसार साधना करे, आपको जरूरत नहीं, आप सिद्ध स्तर में है, आपको फिर ढीठ करके इसे जबरदस्ती करना नहीं चाहिए, छोड़ दो ये सब, थोड़ा आराम करो, छोड़ो, रखो माला पलन, माला को पार्किंग में डाल दो और थोड़ा ये करो, आराम कर दो, आप क्यों इसे जबरदस्ती करके करते हैं। भगवान ने हरिदास ठाकुर को जब इसे करने लगे, हरिदास ठाकुर और रोना बढ़ गया उनका, बोले प्रभु आप भी इसे कहते हैं, आप भी इसे कहते हैं मेरा जीवन के सार सर्वस्व तो नाम ही है, और आप कहते हैं मैं नाम से सिद्धि प्राप्त कर लिया, अब नाम करना जरूरत नहीं है, नाम का सिद्धि तो यही है कि नाम का सिद्धि नाम ही है। अगर हमको कोई सच्चे भक्त है ना, उसको कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं, नाम जप करूं, किस लिए नाम जप कर रहा है, क्या उत्तर देंगे मालूम है, किस लिए नाम कर रहे हैं, ना नाम करने के लिए नाम कर रहा हूं, फिर नाम करके क्या करेंगे, नाम करके नाम करूंगा, फिर नाम करके क्या करेंगे, ना नाम ही करूंगा, क्योंकि नाम स्वयं साधन है और सिद्धि भी है, वही उपाय है, वही लक्ष्य है, वही मीन्स एंड वही ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बोथ। तो नाम एक से अद्भुत, इसीलिए नाम का अमृत कहा गया, वो मरता मिटता नहीं है, नाम अमृत है, अमर है। तो नाम का सिद्धि है, नाम ही है, और नाम करते रहे तो आप कैसे कहते हैं, अभी जो आपका इतना अस्वस्थ है, आप नहीं कर पाते हैं, थोड़ा आराम कीजिए। बोले ना, आराम तो मेरा नाम ही है। तो प्रभु जब आप आए हैं तो मेरे मन में एक इच्छा है कि पूरा आप करेंगे, रो करके हरिदास ठाकुर बोलने लगे, हाथ जोड़ करके नाम करते करते। चैतन्य महाप्रभु बोले, हरिदास आप इसे क्यों कहते हैं, आपको पता नहीं, कृष्ण का और कुछ काम नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, न मां कर्माणि लिप्यन्ति न च कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्म भी न सबध्यते। जो इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि भगवान का कोई काम करने के लिए है ही नहीं, ना कोई फल कर्म फल के प्रति उनका स्पृहा है, कोई चाह है, इस बात को जो जानता है वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म भी न सबद्यते, भगवान का कुछ काम करने के लिए नहीं, वो आत्माराम है, उनका क्या करना है। कुछ करने के लिए नहीं होने पर भी भगवान हमेशा व्यस्त रहते हैं। कौन सा काम में व्यस्त रहते हैं भाई, उनके लिए तो कुछ काम है ही नहीं, फिर किस काम में व्यस्त रहते हैं। तो भगवान कहते हैं एक ही काम भगवान का है जिस काम में व्यस्त रहते हैं। भगवान के लिए केवल एक ही काम होता है जिसमें बिजी रहते हैं, क्या वो काम है। भक्त वांछा पूर्ण बिनु नहीं आन कर्म, अपने भक्तों का इच्छा को पूर्ण करने के अलावा उनका लिए और कोई कार्य नहीं, एक ही प्रोजेक्ट है उनका, एक ही प्रोजेक्ट अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ति करना। बोले तुम जैसे उच्च कोटि के भक्त हो हरिदास, आपकी इच्छा को कृष्ण पूरा नहीं करेंगे, कैसे सोचता है आपने। अवश्य पूर्ण करने, कृष्ण को पूर्ण करना करना ही होगा, स्वयं तो कृष्ण है ही है, वैसे बोल रहे हैं। बताओ क्या आपका इच्छा है प्लीज। हरिदास बोले नहीं आप ऐसे बोलते हैं, प्रतिज्ञा कीजिए सही में पूरा करेंगे। अरे प्रतिज्ञा करते में बता ना, भगवान की प्रतिज्ञा है भक्त इच्छा पूरा करते हैं, और तुम जैसे भक्तों की इच्छा पूरा नहीं करेंगे ना। प्रभु मैं भक्त कहाँ हूं, मैं तो भक्ताभास भी नहीं हूं। भक्त जो होते हैं अपने को इतने विनम्र इतने दीनहीन मानते हैं। हरिदास ठाकुर के परिचय पाते हैं उनके चरित्र में, बोले कि ना तो भक्ति का आभास भी नहीं मेरे में, आप ऐसे क्यों कहते हैं। तो आप सचमुच मेरा जाकर, मैं जानता नहीं कृष्ण करेंगे नहीं करेंगे, मैं आपको जानता हूँ, आपको ही जानता हूँ, आप मेरे सब कुछ हैं, मेरे जो कुछ अभी तक मैं प्राप्त किया हूँ, जो भी साधना जो कुछ प्राप्त किया हूँ, सभी केवल आपकी कृपा है। तो इसलिए आप कृपा करके मुझे बताइए, वचन दीजिए कि मेरे इच्छा आप क्या पूरा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले ऐसी मत को हरिदास, बोलो बोलो मैं प्रमिज करता हूँ। जैसे प्रमेज किए तो हरिदास ठाकुर बोले हे प्रभु मेरा एक इच्छा है, अब मैं बचपन से अभी तक प्रतिदिन आपके नाम उच्चारण करते आया हूं, कितने कठिन कितने झड़ झंझा कितने तकलीफ के सामना करके मैंने नाम जप नहीं छोड़ा, और कभी आपसे कुछ भी आशा नहीं किया हूं, कुछ भी इच्छा नहीं किया हूं, लेकिन आज एक इच्छा है ना, बोलो मैं जानता हूँ, मैं इच्छा पूरा करना चाहता हूँ, बोलता बताओ क्या इच्छा है। बोले बस और कोई इच्छा नहीं, एक ही इच्छा ही है कि मैं आपके सामने मेरे शरीर रखना चाहता हूँ, आपके सामने मैं प्राण त्याग करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर के महाप्रभु को झटका लगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोले रो पड़े, बोले हरिदास आप ऐसे की निष्ठुर क्यों हैं, ऐसे निर्मम क्यों हैं, आपको पता नहीं मैं पुरी में आकर रहने लगा, आपने घर बाड़ी नवदीप अपने वासस्थान छोड़ करके किस लिए, आपके लिए, आप जैसे भक्तों के संग पाने के लिए, जगन्नाथ दर्शन में मन नहीं भरता इसलिए दर्शन करने के बाद आपके पास आता हूँ नित्य प्रति, आपके संग से मैं कितने लाभान्वित कितने लालायित हूँ, मैं आपके पास आता, आप मुझे छोड़ के चले जाना चाहते, इससे निष्ठुर है अपने, ऐसा क्यों करना चाहते हैं, मुझे इसे दुखी क्यों करना चाहते हैं। भगवान जब ऐसे बता, हरिदास ठाकुर बोले हे प्रभु आप ऐसे मुझे मत बताइए, मैं जानता हूं आपके तो अगणित भक्त है, हजारों करोड़ों भक्त, मेरे से कितने बड़े बड़े भक्त हैं, मैं एक भक्त मर जाए तो आपका क्या हानि हो जाएगा। हरिदास ठाकुर एक उदाहरण देते हैं, बोलते हैं कि ऐसे किसान जो आप लोग कौन सा जानते हैं, तिल, तिल जानते हैं, सरसों जानते हैं ना, सरसों राई देखे ना, सरसों बस्टर्ड सीड, उनका सरसों का खेती था, 50 एकड़ जमीन में सरसों का खेती किया था, बहुत अच्छा सरसों हुआ, ट्रक लोड ट्रक ने टेलर 10-5 ट्रक चला जाएगा, ट्रेलर लोड फुल लोड कई टनों सरसों, कई हजारों बोरी सरसों लोड होकर जा रहा है, लेकर जा रहा था। एक सरसों के दाना नीचे गिर गया, वो किसान रोएगा क्या? अरे दो चार क्विंटल गिर जाए तब भी नहीं देखेगा, कौन देखेगा? टनों की जहां, लाखों टनों की जहां कारोबार है, दो पांच किलो का कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं होता। तो इसी प्रकार आपके ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में ये एक ही ब्रह्मांड है, वो एक ही ब्रह्मांड में ये 14 लोक में एक ही लोक है, पृथ्वी लोक। इस लोक में अनेक राज्य है, कितने कंट्री है, देश है, अनेक देश में से एक देश है भारत। इस भारत देश में कितने स्टेट है, कितने राज्य है, इसमें एक राज्य ये है। इस एक राज्य में 30-40 डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, तो एक जिला ही है। एक जिला में से कितने सदर सब डिवीजन है, एक सब डिवीजन ये है। एक सब डिवीजन में कितने पंचायत है, एक पंचायत ये है। एक पंचायत में सैकड़ों गांव है, एक गांव ये है। एक गांव में सैकड़ों घर परिवार है, एक परिवार है। एक परिवार से कई लोग हैं, इनमें से एक लोग है। तो इनमें से अगर एक लोग जो मेरे जैसा है, वो तुच्छ है, इतना कोई आपके जितने भक्त हैं बड़े बड़े उनके समान नहीं है, एक भक्त अगर मर मिट जाए तो आपका क्या फर्क पड़ेगा? आप तो इतने बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, इतने बड़े खेती करने वाले है, जो टनों टनों सरसों का लोड करके ट्रेलर में ले जाते हैं, तो एक दाना सरसों अगर गिर जाए आप रोएंगे, दुख करेंगे? ये क्यों मुझे आपने दिखाते हैं दुख की बात? आपको दुख हो ही नहीं सकता। अरे अनंत कोटि भक्त आपके पड़े हैं, एक से एक सब। मैं इसे नगण्य तुच्छ भक्त मर जाता क्या होगा? तो इसलिए कृपा करके आप मुझे धोखा मत दीजिए। मेरा यही अंतिम इच्छा है, आप वचन दिए आप पूरा कर लीजिए। भगवान कुछ कहे नहीं, उठ करके खड़े हो गए। गोविंद बोले प्रसाद दे देना, मैं जा रहा हूँ। गोविंद पीछे पीछे चले, भगवान चले गए, सीरियस हो गए। बोले आप ये बताइए, आप तो करना ही पड़ेगा। अब दूसरे दिन अब भगवान टाइम पर, आज प्रोग्राम चेंज कर दिए, सुबह सुबह जगन्नाथ दर्शन में जाते थे, आज गए नहीं, आज प्रोग्राम एडिटिंग कर दिए, चेंज करके आपने सारे पार्षद साथियों को बुलाए, सारे साथी उनके जितने थे परिकर सबको बुलाए, बुला करके बोले सब कीर्तन टीम मृदंग करताल लेकर चलो, सब लेकर के खोल करताल गए। अब सीधे बकुल में हरिदास ठाकुर के भजन स्थान में गए। हरिदास ठाकुर तो आज और काल से बुखार चढ़ा था, 104 तो काल ही था, आज और टेम्परेचर बढ़ गया, कोई दवाई तो पानी तो खाए नहीं, और तेज बुखार था, बिल्कुल अवस्था गंभीर था, फिर भी माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार अवस्था में नाम जप फिर भी कर रहे थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु गए जाकर हरिदास को, इसी अवस्था में भी नाम में इतनी रुचि है, 106 टेम्परेचर में भी पड़े पड़े भूख नहीं चल रहा है, इस अवस्था में भी नाम करने के लिए प्रयासी है। तो महाप्रभु उसको देख करके इतने प्रसन्न हो गए, सारे भक्तों के सामने हरिदास के महिमा वर्णन करने लगे। अब भगवान जब भक्तों की गुण वर्णना करने चाहते हैं, एक मुंह उनको कम पड़ता है, एक मुंह में कितना बताऊं? तो कविराज गोस्वामी को 5 मुंह बन गए, पंचमुख होकर के भगवान ने हरिदास के गुण गारिमा को बोलने लगे। ऐसे हरिदास थे, इतने महिमा बोलने लगे। जब हरिदास के नाम उनके ग्लोरिफिकेशन गुण कीर्तन करे, तो हरिदास को देखा कि ये क्या कर रहे हैं मेरे सामने, कि मेरी प्रशंसा कर रहे हैं सबके सामने। बिल्कुल शक्तिहीन थे, इतने शरीर मरने का नौबत था, मरने का समय आ चुका था। लेटते लेटते घिसटते घिसटते जाकर के महाप्रभु के चरण को पकड़ लिए, माला के साथ में चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ कर खींचे, शरीर में शक्ति नहीं था। प्रभु का नजर गया, हरिदास इसे मर्मंत स्थिति में मेरे चरण पकड़ कर खींच रहा है। बोले उनका इच्छा तो पूरा करने के लिए वरदान में काली दे दिया था एडवांस, अब तो इच्छा उनका करना ही है। तो पैर खींचे तो बोले पैर क्या करेगा, आओ खींचे। जैसे पैर खींच जिस तरफ खींचने लगा महाप्रभु उस तरफ चलने लगे। धीरे धीरे लेटे हुए थे हरिदास ठाकुर, लेटे लेटे दोनों हाथ में उनके पैर को खींचे, महाप्रभु धीरे धीरे उनके पास आ गए। आ करके बोले ही आ जाओ, तो एक पैर शरीर ऐसे लेटे हुए थे, एक पैर इधर एक पैर इधर बैठा दिए महाप्रभु, बैठ गए उनके शरीर के ऊपर, उनके छाती के ऊपर बैठ गए महाप्रभु, बैठा लिए छाती के ऊपर ऐसे लेटे लेटे, दोनों पैर को दोनों हाथ से खींच खींच करके। महाप्रभु थोड़ा हल्का कर दिए होंगे, लाइट कर दिए होंगे पैर को, उठा कर ला के आपने छाती में पकड़ लिए, छाती में दोनों श्री चरण को धर करके इसे बख्खे में धर करके पकड़ के रखे और एक निर्निमेष नयन से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख चंद्रमा के शोभा को निहार रहे थे। आंख रोते रोते बोले प्रभु बस मेरा यही इच्छा ना, बोलो तो सही। तो हरिदास ठाकुर रोते रोते बोले, अंतिम उनका प्रार्थना, हृदय धरिमु तुमार चरण जुगाल, मेरे हृदय में आपके दोनों चरण को धरना रखना चाहता हूं, आप कृपा करके ही रखिए उसको। हृदय धरिमु तुमार जुगल चरण, आपके चरण जुगल को मैं हृदय में रखना चाहता हूं, बस अभी आप अलाउ कर दीजिए उसको प्लीज। और क्या, नयन हरिमु तुमार चंद्र बदन, इस दो आंखों से आपके मुख चंद्रमा के शोभा को दर्शन करते रहूंगा, प्लीज अलाउ मी, मुझे करने दीजिए। मैं अपलक नेत्र में आपके मुख चंद्र के अमृत को पान करते रहूंगा, दोनों चरण जुगल को बख्खे में धारण करूंगा, आंखों में दोनों आपके मुख चंद्रमा को दर्शन करूंगा। और क्या करूंगे, ना तीसरा और एक फाइनल विचार है ना, क्या मुखे उच्चारिमु सदा श्री कृष्ण चैतन्य नाम, यही मत प्रभु मोर इच्छा छाड़ी ते प्राण, बस मेरा बस ये तीन थ्री फेज में मेरा काम कर दीजिए। फर्स्ट फेज में क्या है, आपके दोनों कमल चरण को मेरे बख्खे में धारण करके रखूं। दूसरा फेज में मेरे दोनों आंख से आपके मुख चंद्रमा के अमृतमय शोभा को दर्शन करते रहूं। थर्ड फेज है मेरे मुख के मेरे जिह्वा के द्वारा आपके अति शुभ मंगलमय श्री कृष्ण चैतन्य इति श्री कृष्ण चैतन्य नाम को उच्चारण करते रहूं। इस श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण के साथ आपके चंद्र मुख को दर्शन करने के साथ आपके चरण जुगल को बख्खे में धारण करते हुए साथ साथ में मेरा प्राण पखेरु निकल जाए, उड़ जाए। अब यही हुआ। इस प्रकार से भगवान के श्री चरण जुगल को अपने बख्खे में दो हाथ में पकड़ रखे थे, आपने अश्रुपूरित नेत्र से भगवान के श्री मुख कमल को निहार रहे थे, आपने अंतिम शक्ति लगा करके जिह्वाग्र में पूरे शक्ति लगा करके मुख में श्री कृष्ण चैतन्य प्राण निकल गया, नाम के साथ प्राण चला गया, नाम के साथ गया। इस प्रकार के हरिदास ठाकुर के जो विजय हुआ, जो महाप्रयाण हुआ, अभी तक ना हिस्ट्री में न रेकर्ड में ऐसा किसी का हुआ था ना होगा, बड़े अनोखी। ये है नाम की प्रभाव, जीवन पर्यंत जो नाम के साधना किया था यही नाम की सिद्धि है, ऐसे अद्भुत सिद्धि दिया और क्या हो सकता है। साक्षात भगवान आकर के स्वयं उनके तीनों इच्छा को ऐसे पूर्ण किए सारे भक्तों के साथ में कि जैसे उनके महाप्रयाण हुआ, भगवान रो रो करके कूट करके पागल होकर के उनके शरीर को अपने गोद में हाथ में उठा करके दे नृत्य किए, उदंड नृत्य किए और सारे भक्त लोग मिल करके उच्छ्वस कीर्तन किए। सारे बड़े बड़े भक्तों के बीच में कीर्तन, भगवान स्वयं उनके गोद में हरिदास ठाकुर के मर शरीर को उठा करके नाचने लगे, भगवान अपने गोद में ला करके नाचे, नाचते ही जा रहे हैं, उदंड नृत्य कीर्तन। स्वरूप दामोदर बोले, प्रभु संस्कार करेंगे या नहीं? बोले अच्छा हो, करना होगा। तो तुरंत उन्होंने पहले से रेडी किए थे, क्या बोलते ना, आरती बोलते ना, जो लकड़ी में बांध करके जिसमें ले जाते हैं डेड बॉडी, तो उसमें रख करके भगवान स्वयं अपने कंधे में धारण किए उनके शरीर की आरती, अपने कंधे में भगवान उठाए उनको। देखिए, जो जीवन भर नाम जप करता है उनको कंधा देने के लिए कौन आता है? स्वयं भगवान आते हैं। वो तो लकड़ी उठान, वो तो स्वयं अपने गोद में उठाना चाहते थे, लेकिन बोले नहीं, सांसारिक नियम कुछ और है, आप इससे परे नहीं आना, कर प्लीज मत की। तो उसको उठाया अपने कंधे में, उठा करके नाम के साथ लेकर के गए, नाम कीर्तन करते हुए लेके गए। महोदधि तटवर्ती समुद्र किनारे लेकर के उनको इसी शरीर, दिव्य शरीर को स्नान करवाया गया, नूतन वस्त्र पहनाया गया, तिलक आदि करावा गया, माला आदि सुशोभित कराया गया। और समुद्र के मिट्टी तो है नहीं, बालू हाथ में, कोई कोदाल फदाल का जरूरत नहीं, हाथ में बालू खुद करके उसमें उनको, उनके दिव्य शरीर को रख करके सभी ने अपने हाथ में बालू चढ़ाए, उनको ही समाधि दिए, बालू दे करके उनके ऊपर तुलसी रोपण किए, परिक्रमा किए। और वहीं हरिदास ठाकुर को जहाँ उनके शरीर को स्नान कराए थे, सारे भक्त लोग को स्नान किए, हरिदास ठाकुर को पहले पूजा परिक्रमा किए, महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए उनके समाधि संस्कार करके, वहीं पर खड़े होकर हाथ उठाकर ऐलान के घोषणा किए, बोले आज से मैं घोषणा करता हूँ मुक्त कंठ में कि आज इस महोदधि का, समुद्र का ये स्थान, ये घाट इतने पवित्र हो गया कि हरिदास ठाकुर के मर दिव्य शरीर को यहाँ स्नान कराया गया कि ये स्थान युग पर्यंत इतने पवित्र हो जाएगा, इस स्थान पर जो कोई आके स्नान करेगा हरिदास ठाकुर के समाधि दर्शन करते हुए, तो उनको नहीं चाहते हुए भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। बताओ कितने इजी कर दिए, ऐसे वरदान दिए। अब फिर उठ कीर्तन के साथ लेकर गाय, बोले इतने में मन नहीं माना, नाम जपकारी भक्त के लिए भगवान ने इतने करने पर भी मन नहीं भरा उनका, ले सब कुछ तो कर दिया, गोद में उठाया, शरण धराया उनके छाती में, उनको दर्शन दिया, वो मेरा मुख देखा, मेरा नाम लेते लेते शरीर छोड़ा, पहले से उनका गुणगान कराया, खुद गोद में उठाकर नाचा गाया, उनको कंधे में उठाकर लेकर के नहलाया धुलाया, समाधि दिलाया, कीर्तन किया, सब कुछ किया, फिर भी मन नहीं भरा, ना कम किया मेरे भक्त के लिए, नाम ही भक्त है, नाम कर रहा था, मन नहीं भरा। भगवान को बोले ना, मैं भंडारा करवाऊंगा उसके लिए, भोजी करवाऊंगा उसके लिए, फिस्ट नहीं दिलाऊंगा, मेरे इतने बड़ा भक्त था, उनके देह रखा, मैं फिस्ट नहीं दूंगा, सबको भक्तों फिस्ट खिलाऊंगा। अरे तू सन्यासी हो, तेरे पास कुछ है ही नहीं, बोले मैं लोन लेकर फिस्ट कराऊंगा, मांग कर भिक्षा करूंगा। भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के पूरी बड़दांड मार्केट में हरेक व्यापारी के पास जाकर के अपने उत्तरी फैलाए, भैया कुछ दे दो मुझे, मेरे प्रेमी भक्त हरिदास का प्रयाण हो चुका है, उसके लिए मुझे भंडारा करवाना है, कुछ दे दो। आप बताओ ये है कौन जो मांग रहा है, कौन है, भूल गए बताने, उनका एड्रेस बताना नहीं, कौन है? साख्यात लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी के पति है। और लक्ष्मीपति जाएंगे भीख मांगने के लिए झोला फैला करके, लक्ष्मी की शर्म नहीं लगेगी? ये क्या हो गया उनको, मैं तो हूं, मेरे होते होते ये अब ये जो पूरी जानते हैं ना, ये घटना पूरी में हो रहा था, पुरी को श्री क्षेत्र कहा जाता है, जानते ना, श्री जी लक्ष्मी जी का नाम है ना, श्री क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि लक्ष्मी जी को मालूम है ना उनका घर कहाँ है। अरे सागर कन्या है, पता नहीं लक्ष्मी जी के पिताजी कौन है? सागर, समुद्र है, समुद्र से प्रकट हुई थी ना, इसलिए लक्ष्मी जी को सागर कन्या कहते हैं। सागर की बेटी है, समुद्र की बेटी है, तो समुद्र के किनारे तो है, तो उनके क्या पिताजी के घर ना, क्या बोलते हैं आपके, मायके ना, मायके, उनके मायके। और वो ठाकुर जी ससुराल में है, मतलब यहाँ मतलब ससुराल में होगा ना, उनके पत्नी के मायके मतलब ससुराल, ससुराल में है, ससुराल में जा करके स्वयं लक्ष्मी जी जहां उनके पूर्ण प्रभाव है उनके घर में, श्री क्षेत्र में, श्री जी के क्षेत्र में उनके पति जाकर के झोला फैलाकर भीख मांगे, उससे बढ़कर शर्म कुछ नहीं सकता है, हो सकता है लक्ष्मी के लिए। उनके दासियां बोलेंगे, बोले माताजी ये क्या कर रहे हैं आपके, मैडम देखो तो सही आपके वो क्या कर रहे हैं। लक्ष्मी आकर बोले ये क्या हो गया आपका, लेकिन सुनते थोड़ी, तो रोते जा रहे हैं, होली फैला रहे हैं, इतने पागल हो चुके हैं भक्त के प्रेम के मारे, पत्नी की बात ना सुने सब। पत्नी बोलते मेरी इज्जत जा रहा है, आप ये क्यों कर रहे हैं ना, मेरे हरिदास के लिए मुझे मांगना है। लक्ष्मी बोले ये बात नहीं सुनने वाले हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा मेरे मान सम्मान रखने के लिए। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, जिनके यहाँ मांग रहे थे ना जो व्यापारी, व्यापारी के वहां लक्ष्मी बैठ गई, उन तो देने लगे, दो हाथ में देने लगे, ऐसे देने लगे उठा भी नहीं पाए, ले नहीं पावे, लक्ष्मी देने लगी हर जगह में। लक्ष्मी बोले तुम मांगने वाले, मैं देने वाली, लो तुम जब मांगने वाले बने मैं भी तो देने वाले बनू, मैं लक्ष्मी हूँ, आपके सेवा कौन करेगा, दूसरे कौन देंगे, थर्ड क्लास लोग, मैं ही दूंगी। तो देने लगे लक्ष्मी, ऐसे देने लगे इसने भगवान ले भी नहीं पाएंगे, लक्ष्मी देने लगी खोल करके। तो कई लोग आए इकट्ठा करने के लिए, बहुत जल्दी इकट्ठा हो गया, और इस सारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बुलाए, ब्राह्मण भोजन आज कराऊंगा, पूरे जिला के लोगों को बुलाए, भंडारा करवाएंगे, सबको बुलाए, आप सबके लिए महाप्रसाद, महाप्रसाद खाने के लिए, महाप्रसाद सबको खिलाए पेड़ो। महाप्रभु बोले मैं परिवेषण करूंगा, बताओ। बोले इतने भी नहीं मन भरा, खूब भीख मांग करके उनके फिस्ट के अरेंजमेंट किए, प्रसाद आ गया तो बोलते हैं कि मैं सर्विंग करूंगा, क्यों? बोले मेरे भक्त के लिए मैं सर्विस नहीं करूंगा, और किसके लिए करूंगा, है ना? नहीं, हम तो जब कहते हैं मैं फिस्ट सुमसर करूंगा, सर्विस ही मैं करूंगा, लेकिन देखो भगवान ने क्या नहीं किए, एवरीथिंग स्पॉन्सर्ड बाय हिम, लेकिन फिर भी मन नहीं भरा, बोले मैं परिवेषण करूँ। सबसे पहले बकेट चामच लेकर के उठे सर्विस करने के लिए, और सर्विस शुरू किए, माने वो मानते ना, मानने वाले ही नहीं, सब ब्राह्मणों को लाइन में बैठा कर सर्विस शुरू किए परिवेषण। अब एक एक व्यक्ति जितने खाए उनके पत्तल में पांच पांच व्यक्ति का भोजन डाल रहे, भगवान का हाथ तो छोटा नहीं है ना, भगवान कंजूस नहीं है, ऐसा ऐसा डालते हैं इतने पांच पांच, वो बोलते हैं और भगवान के हाथ से मिलता है, भगवान के प्रसाद कौन छोड़े, भले आज पेट फटे ओवरलोड हो जाए, आज तो खाएंगे छोड़ेंगे नहीं उसको ये चांस कहाँ मिले। ऐसे परिवेषण किए लेकिन कोई खा नहीं रहे, भगवान ने परिवेषण कर गए हजार लोगों को, कोई खा नहीं रहे, बटे भगवान बोले स्वर्गदान बोले खा क्यों नहीं रहे, बोले प्रभु आप तो मानते तो है नहीं, जब तक आप नहीं खाएंगे कोई नहीं खाएंगे, ये आपको सब जानते हैं आप कौन है, आपको जानते हैं इसीलिए तो मनाने सब ले रहे हैं, लेकिन आप जब तक शुरू नहीं करें कौन खाएगा। अरे मुझे तो पता नहीं था, मैंने खाना ना, नहीं आप नहीं खाने से कोई नहीं खाएंगे, तब स्वयं को बैठना पड़ा, बकेट छोड़ करके बैठे, पत्तल लेके बैठ कर जब खाना शुरू किए, सब हरी बोल देख रहे एक साथ में खाए, डायरेक्ट भगवत प्रसाद सब पाए। खिलाने के लिए बाद बोले दक्षिणा देना, के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, दक्षिणा कहाँ से दूं, ब्राह्मण भोजन कराया, बोले देखो मैं भिखारी हूं कुछ नहीं, मैं वरदान देता हूं, अब वरदान दे सकता हूं, सन्यासी हूं ब्राह्मण भिखारी हूं, बोले हाँ वरदान चल दे दो, बोले देखो वरदान ही देता हूं, क्योंकि भगवान ने जो थे तभी भगवान के साथ में जितने लोग थे कीर्तन किए, श्रवण किए, समाधि उत्सव में गए, उनको तो कल्याण हुआ ही, लेकिन हम लोग तो ना कीर्तन में था ना देखने में, तो कहीं का नहीं था, हम तो 500 साल बाद ही आए। तो भगवान ने हमने लिए भी व्यवस्था कर दिए। बोले जो हरिदास ठाकुर के प्रयाण उत्सव में भाग लिया, जो उनके कीर्तन किया, जो उनको कंधा दिया, जो उनके समाधि में बालुका दिया, जो उनको स्नान कराया, माला पहनाया, कपड़ा पहनाया, तिलक करवाया, जो उनके भिक्षा किया, जो उनके फीस्ट में भोजन किया, उनका सब तो मैं कल्याण करूंगा ही, लेकिन जो ये हरिदास ठाकुर के प्रयाण के कथा सुना, मतलब ये आप लोग के लिए। बोले 500,000 साल बाद तो कोई आदमी को सुनेंगे सही इस बात, कैसे हरिदास ठाकुर ने किस प्रकार थे, कैसे उनका प्रयाण हुआ। इस हरिदास निर्यास, हरिदास प्रयाण के कथा जो सुनेगा, उनको भी अभी से 5 साल पहले एडवांस वरदान दे दिए, उनको भी मैं कृष्ण भक्ति प्रदान कर देता हूं। जो किए, जो अभी करेंगे सुनेंगे, उनको भी है ना, नहीं तो ही है। एक नामी भक्त का नाम का ये प्रभाव है, केवल नाम के प्रभाव से भगवान को इतने वशीभूत कर डाले, इतने अपना अपने इतने वशीभूत कर डाले, भगवान भूल गए सब कुछ, अपने पोस्ट पोजीशन, पत्नी, घर बाड़ी भूल कर पागल की तरह हो गए। ये नाम की प्रभाव है, नाम से नामी को ऐसे प्रभाव पड़ता है। तो फिर आप लोग के नाम के पीछे इतनी कंजूसी क्यों करेंगे। आज तो विशेष माघ पूर्णिमा, फिर ग्रहण समय है, अभी तो सर्वमुखी हो चुका है, टाइम अनेक हो चुका है, अब आप सुन चुके हैं, 2 मिनट हरि नाम करके फिर जाएंगे प्रसाद के लिए, है ना। लेकिन कंडीशन यही है कि मैं बोलूंगा तो मेरे पीछे पीछे सबको गाना पड़ेगा, हैं, कोई शर्म के मारे इसे करके बैठना नहीं है, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए
राम राम।
समवेत भक्त वृंद की श्री हरि नाम संकीर्तन की इताय गौर हरि प्रेमानंदे। आप सबको विशेष धन्यवाद है, आप लोग ने सब सुने।
हरे कृष्णा, जोर से बोलिए
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे।